तो कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। अगला टॉपिक है शरीयत और तरीकत। ये दोनों नाम आपने सुने। शरीयत का लफ्ज़ तो बहुत कॉमन है, आप में से बहुत सारों ने सूरत मायदा के अंदर इस पर डिटेल से बातें सुनी है। तरीक़त थोड़ा सा फ़र्क है, ये क्या चीज़ है। इन दोनों को समझने के लिए इन्होंने एक मिसाल दी है। लिखते हैं कि आपने ट्रेन को चलते हुए देखा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ भाप यानी ताकत और एनर्जी है, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल चलता है ना, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उसमें बिजली चलती है। ट्रेन के अंदर भाप होती है, स्टीम, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। इस एनर्जी से इंजन चलता है और तमाम डब्बों को खींच कर 60-70 मील की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है। ये ईंधन, ये ताकत, ये जोश, ये जज्बा, ये एनर्जी, ये तरीकत है। बात समझे? गाड़ी को चलाने के लिए जिस भाप की ज़रूरत होती है ना, दीन के काम करने के लिए भी इंसान को इसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप इसको ऐसे समझिए कि ईमान एक मोमिन की एनर्जी है। गाड़ी चलाते हुए भाप ना हो, स्टीम ना हो, तो गाड़ी नहीं चलती, बल्कि ट्रेन कहना चाहिए, ट्रेन भाप के बगैर नहीं चलती। इसी तरह ईमान का ईंधन ना हो अंदर, तो इंसान कभी भी नेकियों में भाग नहीं सकता। अब एक चीज तो हो गई शौक, जज्बा, सेल्फ मोटिवेशन, ईमान, इस बात का यकीन कि आपने ये काम करना है। दूसरी चीज ट्रेन का पटरी पर चलना है, इस बात का एहतमाम करना कि ट्रेन पटरी के ऊपर ही रहे, पटरी से नीचे ना उतर जाए। ये है शरीयत। बात वाज़े? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कहाँ आती है यह आयत? सूरत मायदा के शुरू में, ठीक है। अल्लाह ताला ने शरीयत की पटरी बना के दे दी, मैं और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए पूरी दुनिया में शायद एक स्टैंडर्ड है पटरी की चौड़ाई का। कोई ट्रेन कहीं भी चलेगी वो उस पटरी के साइज के मुताबिक ही बनाई जाएगी। फिर आप देखिए कि उस पटरी के ऊपर जो साइड्स पे बाउंड्री सी लगी होती है, उसके अंदर ट्रेन के पहिए जाते हैं ना, आप अगर नीचे से पटरी बदल दें तो क्या होगा? ट्रेन गिर जाएगी या चल नहीं सकेगी। नेकियां हो नहीं सकती जब तक के शरीयत की पटरी पे ना रहें। जिस तरफ ट्रेन का कांटा बदल दिया जाए वो इसी तरफ मुड़ जाए। ये पटरी और ये रास्ता ही शरीयत है। इस शरीयत पर चलने की ताकत, जज्बा, ईंधन, ईसार, कुर्बानी और शहादत की लगन, ये सब तरीकत है। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अगर बहुत ज़्यादा जज्बा और ताकत हो लेकिन ट्रेन पटरी से उतर गई तो मारे गए। इसी तरह अगर ट्रेन पटरी पर तो खड़ी है, यानी आप इमेजिनेशन में लाए ना कि ट्रेन खड़ी है पटरी पर, लेकिन आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, पता चला अंदर भाप ही नहीं है, स्टीम नहीं है जो लोगों को लेके जाएगी, तो रास्ता तय नहीं होगा। शरीयत पर चलते हुए ही तरीकत के जोश और जज्बे से अल्लाह ताला मंजिल तक रास्ता तय करने की तौफीक देता है। थोड़ा सा इसको मजीद वाजे करती हूँ। आप देखिए कि आप कुछ करना चाहते हैं ना नेकी के नाम पर, हर इंसान के अंदर तड़प है। पहली चीज देखिए कि शरीयत उसके लिए क्या कहती है। आप ये छोटी सी तस्वीर बना लेना ट्रेन की, पटरी जो है वो है शरीयत। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक पटरी पूरी कर दी। कहाँ से चलती है, कहाँ जाती है? सिराते मुस्तकीम, सबीलुल जन्ना, जन्नत तक जो रास्ता जाता है ना, जिन कामों के करने से, जिन तरीकों के इख्तियार करने से। आप तसव्वुर में लाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो पटरी बन गई, ठीक है। अब हर दौर की बोगी, हर दौर की ट्रेन में बैठे हुए लोग जब तक उस पटरी के ऊपर चलते जाएंगे जन्नत में पहुंच जाएंगे। इतनी बात वाज़ है? सहाबा का दौर हो, आप ठीक है ये कह लीजिए कि इंजन जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, मिसाल है, तो फर्स्ट बोगी या फर्स्ट कैबन ट्रेन का हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर, उससे पिछली बोगी उमर फारूक के नाम पे, तीसरा डब्बा जो है वो हजरत उस्मान अली। हर दौर में एक एक बोगी का या एक एक कैबिन का इजाफा हो रहा है ना, किसी भी दौर के लोग हो, अब आप देखिए ना ट्रेन बाज बार 100-100 कैबिन्स की भी होती है, सब कहाँ पहुंचते हैं जिधर इंजन जाता है, बस ये सिंपल सी चॉइस है। आज चाहे 1400 साल गुजर गए नबी सल्लम को दीन लेकर आए हुए, जब तक हम शरीयत की पटरी पे हैं हम जन्नत में जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना आज के दौर में दीन बदल दो, आज के दौर के तकाजे और हैं, आज के दौर में सूद के बगैर नहीं जी सकते, आज के दौर में हराम के बगैर गुजारा नहीं, रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं, वो अपने लफ्जों में क्या कहते हैं कि ये पटरी जो है ना इसको चेंज कर दो। तो पटरी चेंज करना दीन बदलना। लोग उर्दू में भी एक मुहावरा भी कहते हैं ना, ये आजकल पटरी से उतरा हुआ है। हर वो बंदा जो कुरान और सुन्नत, बल्कि आप वो पटरी जो बना रहे हैं ना उसके एक साइड पे लिख लें कुरान और दूसरी तरफ लिख लें सुन्नत, एक तरफ ट्रेन का पाँव चला जाए दूसरी पे ना जाए तो भी ट्रेन नहीं चलेगी ना, दूसरे पे चला जाए पहले पे ना जाए फिर भी नहीं चलेगी। कब चलेगी? दोनों में साथ साथ चलते चलते ट्रेन उसके ऊपर रहेगी। अच्छा अब ये तो हमें समझ आ गई, शरीयत बहुत आसान है, ये तरीकत के लफ्ज़ को बेशक अपना पड़े, ये सिर्फ इसलिए इधर आपको मैंने भी पढ़ा दिया बुक में था चूके कि कहीं आप सुनेंगे ना, तरीकत तरीके से कुछ करना है, बस लोग नेकियां करना चाहते हैं। होता क्या है जो मैंने पीछे भी थोड़ी सी बात की थी पिछले हिस्से में कि पटरी से उतर कर दीन का काम करना चाहते हैं वो ठीक नहीं होगा। आप नबी सल्लम और सहाबाए कराम को मेयार बनाएं, जैसे जो काम वो करते रहे आप भी करते जाएं। भाप अंदर ज्यादा होगी ना, जैसे आप कहते हैं ना हॉर्स पावर, या जैसे इंजन स्ट्रांग होते हैं तो वो गाड़ियां चलती जाती हैं। पाकिस्तान में अगर आपने सफर किया हो तो आप देखेंगे कुछ ट्रेन्स है वो रात को चलती हैं सुबह पहुंच जाती हैं, कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो 24 घंटे लेती होंगी। एक तो फर्क है ना कि कौन सी किधर रुकती है, लेकिन कुछ जो है वो तेज चलती हैं। तेज काम का आपने नाम सुना होगा, एक मुझे याद है ट्रेन शालीमार के नाम पे चलती थी, बस उसके लिए मशहूर यह था कि रात को बैठो सुबह पहुंच जाओ, फास्ट होती है ना, ऐसी होती है ना। आपके अंदर जिस दर्जे का ईमान है, ये जो पीछे से शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप अल्लाह के रास्तों में उतना तेज भागेंगे। जब हमारे अंदर से एनर्जी खत्म होने लगती है ना, ऐसा होता है बहुत सारों के साथ होता है, हम सब इंसान हैं, कभी सुस्ती आ जाती है, कभी फर्ज पढ़ने भी मुहाल होंगे, कभी हो सकता है सुन्नत नफिल भी पूरे पढ़े, रमज़ान आता है तो हम नफिल पे नफिल भी पढ़ लेते हैं। ये अंदर के वो भाप वाले इंजन की वजह से होता है। आप एक नेकी करेंगे ना, आप देखिएगा अगले दिन दूसरी नेकी करना और आसान लगेगा। हर नेकी दूसरी नेकी का दरवाज़ा होती है। आप आज एक नेकी छोड़ें अगली नेकी मुश्किल होगी। नमाज पढ़ते हैं पांचों पढ़ेंगे, किसी वक्त एक नमाज छूट गई या छोड़ दी तो उसे अगली नमाज बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए बाद दफा देखिए बीमारी के बाद जब औरतें उठती हैं तो कई लोगों को याद ही नहीं रहता, अरे मैंने तो नमाज पढ़नी थी, याद ही नहीं कि आज पढ़नी थी, है ना, ना पढ़ने की वजह से सुस्ती आ गई, या उन दिनों में दिल कसलमाया रहता है और भी नेकियां नहीं होती। तो अपने अंदर भाप रखे, ये आपका अपना चलेगा, कोई अब आपको नहीं कहेगा कि आपको यहां क्या करना है इस दुनिया के बाजार में, आपको पूछना पड़ेगा कि हमसे कुछ काम ले लें, पक्की बात है, क्योंकि ये सहाबा की सुन्नत थी। यस सलूना का माज युनफिकून, ये आपसे सवाल करते हैं कि नबी हम क्या खर्च करें। दो बार ये आयत है सूरत बकरा में, थोड़े से आयतों के फर्क से तसल्ली नहीं होती थी, वो पूछते थे हम क्या करें, हम अपना माल कहां लगाएं। आज दीनदार क्या कहते हैं, चंदा दे दो, हमें माल की जरूरत है पैसे दे दो। इस्लाम का ये मिजाज नहीं था। इस्लाम का मिजाज क्या है, जो कर सकता है वो पूछता है नेकी, हम क्या करें। इसी तरह सहाबा के बहुत सारे अमल दिखते हैं, अल्लाह के नबी मेरे किस अमल पे अल्लाह ताला मुस्कुराएगा, अल्लाह के नबी अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल क्या पसंद है। एक मौके पे चंद लोग अल्लाह के नबी के पास आ गए, कहने लगे कि मुफलिस और कलाश है, यानी बहुत पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन कोशिश करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं रोजे भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी जो अमीर लोग हैं हमारे शहर के वो भी ये सब कुछ करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास पैसा बहुत है तो वो अपना पैसा भी अल्लाह के रस्तों में लगाते हैं, तो उनके तो दर्जे बुलंद हो गए, तो वो तो जन्नत में हमसे आगे जाएंगे। तो चूंकि हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है तो इसका मतलब क्या हम उनसे पीछे रहेंगे, अब देखिए तड़प क्या थी उस दौर में, जज्बा नेकियों में बढ़ने का था। आज तो हम एप्लीकेशन देते हैं ना नेकी ना करने की, वो एप्लीकेशंस देते थे नेकी करने की। अल्लाह के नबी ने उनको मायूस नहीं किया, कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि हर नमाज के बस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये तस्बीहात कर लिया करो, तो तुम उन्हीं के दर पे पहुंच जाओगे जो माल खर्च करके लगाते हैं। खुश हो गए, अच्छा जी चले हमारा नेकी का एक और रास्ता खुल गया। थोड़े दिन गुजरे, वापस आगे मायूस हुए हुए, क्यों भाई? कब वो अमीर लोगों को भी इस वजीफे का पता चल गया, उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो अब फिर वो हमसे आ गए। तो कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। आज वो मुआशरे बनाने की ज़रूरत है। माल वाले माल ले ले के फिरते थे कि अल्लाह के लिए इसको कहीं लगा लो, इन्वेस्ट कर दो। हमारे घर पड़ा तो बोझ है, ये अल्लाह के रास्ते में पड़ा हुआ हमारा सदका जारी है। बच्चों वाली औरतें बच्चों को ले लेके आती थी कि अल्लाह के नबी ये मेरा बच्चा नहीं, इसको अपने साथ ले जाए। भाई ये इतना सा बच्चा क्या करेगा, गोद का बच्चा एक औरत लेके आ गई। कहा आप इसको साथ रख ले, जब दुश्मन आप पर तीर फेंकेंगे तो मेरे इस बच्चे को ढाल बना दीजिएगा, कि मैं और कुछ कर नहीं सकती, मेरा जवान बच्चा तो कोई है नहीं कि जो आके आपका दस्तों बाजू बने, ये मेरा न्यू बॉर्न बेबी ले जाए, इसके सीने में तीर लग जाए ताकि इस्लाम बच जाए। है या जज्बे? हम जान बचाने को दीन कहते हैं, वो जान देने को दीन कहते थे। एक औरत बालों की चुटिया काट के ले आई, कहा इसको क्या करना है? कहा जब आपके घोड़े की या ऊंट की रस्सी टूट जाएगी ना, तो उस रस्सी की जगह इन बालों को बांध ले, क्योंकि मेरी ये चीज़ अल्लाह के रास्ते में लग जाए। ये तरीकत है, आप हर वक्त इस जमा तफरीक में रहें, मैं अपना क्या इस्लाम को पेश कर सकती हूँ, मेरी कौन सी चीज़ है जो बेकार है लेकिन उसको मैं कारामद बना दूँ, मेरा वक्त, मेरी स्किल्स, मेरे बच्चे, मेरा माल, मुझे अल्लाह ताला ने कोई भी सलाहियत दी, मैं कैसे इसको इन्वेस्ट करूं? देखिए जो मोमिन होता है ना वो बहुत बड़ा कारोबारी होता है। आज अगर आप 10 घंटे कहीं काम करें 1,000 करोन मिलता होगा, मिसाल दे देती हूँ, दुनिया ने आपके उन 10 घंटों की कीमत 1,000 करोन लगाई। कोई कर सके काम तो वो घर नहीं बैठेगा, ठीक है 1,000 मिलेगा, महीने के 30,000 आ जाएंगे। आप दुनिया की जुबान से तो इस तरह कोशिश करते हैं और आप अल्लाह के रास्ते में 10 घंटे लगाते हैं, तो 1,000 तो उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। किसी एक की जिंदगी संवर जाए, किसी एक का घर बच जाए, किसी एक के बच्चे हिदायत पे आ जाए, तो वो 1,000 करोन तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो जाया करने से बचाना खुद को, ये तरीका था, और ये तरीका था नबियों का। बेअमल नहीं बैठते थे, कुछ करो। अच्छा फिर कुछ करो के नाम पे हम करने भी लगते हैं ना, तो फिर कुछ वो करते हैं जिससे मजीद दुनिया बढ़ जाए, कुछ और हमें दुनिया कमाने के मौके हासिल हो जाए। जब तक दुनिया कमाने के शौक की तरह नेकियां कमाने का शौक नहीं लग जाएगा ना, हमारे रास्ते कभी अल्लाह की तरफ नहीं खुलेंगे। एक और मिसाल इन्होंने दी है, दीन एक अजीम इमारत की तरह। दीन की मिसाल एक इमारत की है जिसकी बुनियाद के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जमीन के नीचे, दूसरा हिस्सा जमीन के ऊपर, एक जाहिर दूसरा बातिन। ऐसे होता है ना, पहले बिल्डिंग बनती है तो नीचे जमीन में खुदती है फिर ऊपर बढ़ती है। जाहिर क्या है? इकरार बिल लिसान, जो हम दूसरों के सामने भी कलमा पढ़ते हैं। और बातिन क्या है? तस्दीक बिल कल्ब, दिल से सच्चा समझना, वेरिफिकेशन बाय हार्ट। जो बुनियाद है जो नजर नहीं आती, दिल का तस्दीक करना, इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी होती है जो नीचे होती है। अगर ये कमजोर होगी तो इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी, सच है ना। तस्दीक बिल कल्ब कमजोर होगा ना, तो आपके दीन की इमारत ऊपर नहीं बढ़ेगी। ईमान इमारत की बुनियाद है, फाउंडेशन है, पहली मंजिल यही है। सूरत असर में फरमाया, वलस्रिनल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। पहली बुनियाद ईमान, यानी आमनू को हाईलाइट कर लें तो पहली बुनियाद ईमान। वामिलुस सालिहात, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, व तवासो बिल हक, यानी आमिलुस सालिहात क्या है, ये पहली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर लिख लें, और दूसरी मंजिल सेकंड फ्लोर वतवासो बिल हक, ये क्या होता है? दूसरों को हक की नसीहत करने लग जाना। और तीसरी मंजिल है वतवासो बिस सब्र, अगर काम करते करते माल जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। बात वाज़े? पहली क्या थी? आमनु, खुद ईमान लाना। दूसरी सीढ़ी या दूसरी मंजिल कह ले इस लिहाज से, बुनियाद क्या है? ईमान नजर नहीं आती। आमिलुस सालेहात फर्स्ट फ्लोर है। दूसरी मंजिल तवासी बिल हक, दूसरों को हक की दावत देना। आज लोग इससे भी घबराते हैं, क्या कहते हैं भला, हम क्यों बुरे बने, हम लोगों के साथ ताल्लुकात क्यों बिगाड़ें? क्योंकि जब भी आप दूसरों को हक बात की नसीहत करेंगे आप लोगों को बुरे लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी को कहेंगे ना नमाज पढ़ो तो कोई इतना बुरा नहीं मानेगा। आप किसी को कहेंगे ना सिगरेट ना पियो तो ज्यादा बुरा मानेगा। डूस का हुक्म दें तो लोग इतना माइंड नहीं करते, एक डोंट से रोकें तो माइंड करते। 10 नेकियां करवाना आसान है एक गुना छुड़वाने से। इसलिए आप देखें लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गिबत भी करते हैं। तो तवासी बिल हक क्या है? कि लोगों को हक बात की वसीयत करें। और तीसरी मंजिल वतवासो बिसब्र, यानी इसमें फिर जो मुश्किलें आए। और नबियों की पूरी जिंदगी तवासी बिसब्र की अमली मिसाल थी। मक्का के 13 साल देख लीजिए, मदीना के 10 साल देख लीजिए, ताइफ की गलियों में आपका घूमना देखिए, और मदीना में आकर दुश्मनों की साजिशों का शिकार होना देखे, और तबूक का सफर देखे। ये क्या तवासी बिस सब्र के बगैर मुमकिन है? क्या ये तवासो बिस सब्र की मिसाल नहीं है? आज हमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाए अल्लाह के रस्तों में, देखिए आप क्यों गए थे तबूक, सब स्टूडेंट्स को पता, कोई जंग नहीं थी लगी हुई, कोई वहां इमरजेंसी भी नहीं थी कॉल, खबर मिल गई थी कि हिरकल अपनी फौजें जमा कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उसको इस्लाम का बढ़ता हुआ नाम अच्छा नहीं लग रहा। बस इतनी सी बात थी, कोई ये भी नहीं था कि चैलेंज करते हैं फौरन एक महीने के अंदर पहुंचो। एक खबर थी कि दुश्मन इस्लाम के खिलाफ कोशिशें कर रहा, मोर्चा बंदी कर रहा। एक कॉल पे आपने सहाबा को जमा कर लिया, सब निकलेंगे, अभी निकलेंगे, खड़ी फसलें छोड़ेंगे, तपती धूप है सर्दी का इंतजार नहीं करेंगे, फसल को काट कर घरों में स्टोर कर लें एक साल की कमाई के तौर पर, एक हफ्ता वेट कर लें, नहीं करेंगे। ये है दीन। हम होते मजबूरियों की इतनी लंबी लिस्टें देते कि फसह बनता व रब्बू का फकातिला इन्नहा हुना कायदुन। जाइए आप, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह के नाम पे काम करें। हम तो इधर ही बैठे हैं क्योंकि हमारे बच्चों की शादी है, अभी हमारे बहुत सारे घर के काम हैं, अभी हमारे हालात साजगार नहीं। मैं सोचती हूँ अगर सहाबा का रवैया ये होता तो हिरकल कब से मदीना की ईंट से ईंट बजा चुका होता। दुश्मनों को पता होता है कि मुसलमान किस कैलिपर के हैं, ये दुश्मनों की साजिशें हैं कि वो मुसलमानों को दुनिया में इन्वॉल्व करते हैं, उनके बच्चों के हाथों में गैजेट्स देते हैं, इनके दिमागों को ट्रैप करो, पकड़ो इनको, क्यों? ताकि ये दुनिया में पड़े और हम अपना काम करें। दुश्मन मुसलमानों को दुनिया में डालने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करता है ना, इतनी आज हम मुसलमानों की तरफ से कुफार को इस्लाम की दावत पर नहीं पड़ रहे। उनका काम ही है कि आपके मुल्कों में ऐसी चीजें सस्ती करके भेजें जिससे आपके बच्चे दुनियादार हो जाएं, मसरूफ हो जाएं। मैं जितना सेलफोन का नाजायज और गलत इस्तेमाल अपने मुल्कों में जाकर देखती हूँ शायद मुझे कहीं और ना दिखे। और मासी के हाथ में भी 2 फोन है और डबल सिम मैंने आज तक पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। हमारे मुल्कों में लोगों के पास ड्यूल सिम फोन है, कान तो एक है, चलो कान तो 2 भी हो गए तो जुबान तो एक ही है ना, एक से सुनेंगे दूसरे से बोलेंगे, एक वक्त तो एक सी बात है। लेकिन आप देखिए, और कोड़ियों के मोल टेलीफोन बिक रहे हैं, सस्ते पैकेज, सब कुछ महंगा, आटा शायद महंगा है टेलीफोन से, लेकिन क्यों? ताकि इनको मसरूफ करो, इनकी रिवायात को तोड़ो। और कभी आपको अपने सेलफोन पे दुनिया में किसी मुल्क की सिम डाल ले, कोई एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस नहीं आएंगे, आया कभी आपको यहाँ बैठ के किसी कंपनी से कि इधर आ जाएं तो ये मिल जाएगा लॉटरी? सारा दिन आपको टिक टिक होती है, कहीं लॉटरी के टिकट तो कहीं, आप आए तो ये ले जाएं तो वो ले जाएं, पैसे खाते हैं लोगों से और आपको तंग करते हैं। क्यों? वो चाहते ये हैं कि आप मसरूफ हो जाएं, दुनियादार हो जाएं, ताकि हम अपना काम करते रहें। दुश्मन को वो मुसलमान अच्छे नहीं लगते जो अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये दीन की एक अजीम इमारत है, इसकी वजह एक मजबूत बुनियाद है जिसके ऊपर तीन मंजिलें हैं। ये तो आप ही जानते हैं ना कि इमारत जितनी ऊंची जाती है पहले उतनी गहरी खोदी जाती है। हर बिल्डिंग की एक लिमिट होती है, आप पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर बस तीन ही फ्लोर डाल सकते हैं। क्यों भाई, एक और डालें, जगह तो हमारी है। कहते नहीं इसकी बुनियाद कमजोर है, अगर आपने इसके ऊपर एक और फ्लोर डाला तो फिर ये गिर सकती है, फिर तीनों भी गिर जाएंगे। तो ईमान का ही सौदा है पीछे, फिर बात वही निकली है। ईमान की बुनियादें गहरी कर लें, अल्लाह आपसे कई मंजिला ऊपर काम ले लेगा। और अगर आप थक गए तो फिर आप जाके अपने ईमान को चेक करें। ईमान गया सब गया। अब सवाल पैदा होता है कि हम दुनिया में तो भेज दिए गए, वापस जाना? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। अब अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है? एक तो जाहरी तौर पे भी है ना, और एक बातनी तौर पे भी। थोड़ा सा इसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें वापस अपने तक पहुंचने के लिए रास्ता बता दिया। अब इम्तिहान ये है कि तमाम रुकावटों के बावजूद अल्लाह तक वापस पहुंच जाएं। ये रुकावटें ही हैं ना दुनियादारी की, कहीं जिम्मेदारियां हैं, कहीं मजबूरियां हैं, कहीं हमारे हालात की पेशबंदियां हैं, लेकिन वाकई ये रुकावटें हैं। याद रखिए, ये दुनिया हर्डल रेस है। हर्डल रेस समझते हैं क्या होती है? रुकावटों वाली रेस। कभी आपने बच्चों के साथ खेला हो, रास्ते में कुर्सी रख देते हैं, कहीं कोई बेंच रख दिया, करना क्या होता है? आपने भागते भागते उस रुकावट को हटाना है और आगे भागना है। जो रुकावटों को हटा के पहले पहुंच जाए वो जीत गया। लिख लीजिए, सिराते मुस्तकीम एक हर्डल रेस है। कुछ लोगों की रुकावटें ज्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। अच्छा, रुकावटें ज्यादा हों, इमेजिनेशन में लाएं, दो लोग इकट्ठे निकले, एक के रास्ते में रुकावटें ज्यादा हैं, एक ही कम है। जाहिर क्या लगता है कि कम रुकावटों वाला जल्दी पहुंचेगा, ऐसे ही है ना? और जिसके रास्ते में से ज्यादा चीजें उसने उठानी है वो देर से पहुंचेगा, आप तसव्वुर में लाएं। लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या देखते हैं? ज्यादा रुकावटों वाला फर्स्ट आ गया, वो जीत गया। भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे तो रास्ते की रुकावटें बड़ी थोड़ी थी। तो क्या पता चला कि जिसके रास्ते में रुकावटें ज्यादा थी ना, उसको एनर्जी भी ज्यादा मिल गई। वो कहते हैं ना, तुंदिये बादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब आपके रास्ते में मुश्किलात ज्यादा आती हैं, आजमाइशें ज्यादा आती हैं, आपकी मुखालफत ज्यादा आती है, तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, उसके खिलाफ ग्रज पैदा होता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरे लिए क्यों मुश्किल है। अच्छा, वो नेगेटिव एनर्जी जो है ना, आपकी स्ट्रीम बन जाती है, भाप बन जाती है। आप तेज भागकर वो रुकावटें दूर करके पहले पहुंच जाते हैं, और दूसरे जिनके हालात बड़े मुवाफिक, बहुत रिलैक्स्ड, वो क्या सोचते हैं, हमारी तो रुकावट ही कोई नहीं, हमें क्या मुश्किल है, जब निकलेंगे पहुंच जाएंगे, मैंने तो जीतना ही जीतना है। लेकिन वो इस खुशफहमी का शिकार होकर ठंडे हो जाते हैं। एक जुमला पहले बोला हुआ कहीं, दोबारा याद आ रहा है कि बास दफा मजबूरियों के नाम पर हमारी मुनाफ़कत छुप जाती है। हम सोचते हैं मजबूर है, रोक दिए गए। शुक्र कीजिए वो मजबूरी आई और आप रुक गए, वरना ये मजबूरी ना भी आती तो आपने निकलना फिर भी कोई नहीं था। अल्लाह ने बल्कि पर्दा डाल दिया आपकी सुस्ती पे, आपके निफाक पे। और आप देखें कि जो अकेला आता है ना, वो बच्चों के साथ भी आ जाता है, जो गर्मियों में आता है ना, वो सर्दियों में भी आ जाता है, जो सेहत में आता है वो बीमारी में भी आ जाता है, और जिसको नहीं आना ना, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं बहाना क्या बताऊं, वो फिर भी नहीं आता। छोटी छोटी बातों पे हम अपनी नेकियों को पीछे कर देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह तक पहुंचने में रुकावटें हैं या आपका इम्तिहान है? अब इम्तिहान ये है कि तमाम रुकावटों के बावजूद अल्लाह तक वापस पहुंच जाएं। अच्छा आप उस शख्स का तसव्वुर में लाएं जरा जो गया है रास्ते में, छोटा सा स्टूल है तो खड़ा हो जाए, हाय कैसे उठाऊं, मुश्किल है, झुकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा बंदा देख के उसको हंस रहा है, दूर खड़ा है बेवकूफ, ये कोई वजह थी रुकने की, पागलपना। लेकिन चूंकि उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है ना, तो वो खड़ा है सुस्ती का मारा, कहते हैं हाय ये छोटा सा स्टूल है लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है। ईमान नहीं होता ना तो छोटी सी रुकावट बहुत बड़ी लगती है, और ईमान की सेहत होगी ना तो बड़ी बड़ी रुकावटें बुरी नहीं लगती। ये ऐसे ही जैसे आप सेहतमंद होते हैं ना तो आपको 6 कुर्सियां भी इधर से उठा के बाहर रखनी पड़े, आप शौक से रख देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कभी जिस्म टूट रहा है, कमजोरी है, बीमारी है, तो आपके सामने एक कुर्सी पड़ी है जिसको आपको कहा जा रहा है कि जरा बाहर रख दें, तो वो कुर्सी पहाड़ लगती है। जो लोग अंदर से बीमार होते हैं ना उनको छोटी सी तकलीफ भी मुश्किल लगती है, और वो शुक्र करते हैं कि ये छोटी सी मुश्किल पड़ी तो हम बैठ जाए, उनको बैठना होता है, बहाना ढूंढते हैं, मिल गया बहाना, वो फिर वहीं बैठ जाते हैं, वो रुकावट के ऊपर ही बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे लिए रखी थी कुर्सी, किधर ही तशरीफ रखे हैं आप। तो अल्लाह तक वापस जाना कोई आसान काम है? इम्तिहान यही है कि तमाम रुकावटों के बावजूद अल्लाह तक वापस पहुंच जाएं। फरमाया देखो जन्नत में तुमसे गलती हो गई थी, किसके थ्रू? आदम अलैहिस्सलाम के। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें तरक्की भी दे दी, यानी प्रमोशन दे दी। क्या तरक्की दी थी? सजदे कराए, बल्कि कहा जाओ अब कुल नह भी तुम इन हजमी अन फैमयाती अन्ना को मिन्नी हुदन फमन तबी हुदाया या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हें अपना खलीफा बना दिया, अब तुम दुनिया में जाओ और जो काम तुम्हें सौंपा गया वो काम करके आओ, और देखो लौट कर मेरे पास आना, रास्ते में गड्ढे और आग है, कहीं इसमें ना गिर जाना। दोजख का गड़ा बड़ा खतरनाक है। फ़ैमयातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया खुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह बकरा आयत 38 है। मेरी तरफ से तुम्हें मुसलसल हिदायत पहुंचती रहेगी, मुझसे राबता रखना और जो मेरी हिदायत की पैरवी करता रहेगा इस पर कोई खौफ कोई गम नहीं होगा। ऐसी है ना, यही हमें मैसेज दे के भेजा गया था ना। अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए एक तरबियती कोर्स दिया जिसे आमाल या इबादत कहते हैं। ईमान के बाद आमाल इबादत के 4 अज्जा हैं, क्या? सलात, ज़कात, सियाम, हज। ठीक है, बाज़ इसमें जिहाद को डालकर 5 भी करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इसमें अहम बात यह है कि ये सारी इबादत करते हुए हम सिर्फ इसकी सूरत तक और इसकी शक्ल तक ही खुद को महदूद ना रखें बल्कि इसकी हकीकत हासिल करें। बात वाज़े? आपको इबादत का मुकाम समझ आया दीन में? ये टेस्ट है किस चीज का? अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को दूर करो। 5 नमाजों में किस किस रुकावट को हम दूर करते हैं? फजर में नींद को, जोहर में काम को, असर में आराम को, मगरिब में गिल्ट है, हाय दिन खत्म हो गया, और ईशा की रुकावट थकन है, सारा दिन काम करके थक गए। ये 5 रुकावटें हैं नमाजों की सूरत में जिनको दूर करने के बाद अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को दूर करना आसान हो जाता है। ये ट्रेनिंग है, जैसे आपने देखा होगा ना, लोग पहले ट्रेनिंग कराते हैं फिर कुश्ती कराते हैं ना, प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होती है, फिर कोई काम होता है। ये 5 दफा दिन में बंदे को आदत डाली जाती है कि जब कभी तुम्हें कहा जाएगा आओ मेरी तरफ तो लब्बैक कहना, प्रैक्टिस के लिए नमाजी। वरना देखिए एक ही दफा सारी पढ़ा ली जाती, 5 नमाजों को जमा कर लें, चले आप उसके फराइज को जमा करें, 1 घंटा लग जाएगा आपको, तो आपको कहा जाता 24 घंटे में जब मर्जी 1 घंटा इबादत कर लो, चलो अपनी मर्जी से कर लो, और कुछ नहीं तो फजर को रख दिया जाता दिन चढ़े पे, 10 बजे फजर पढ़ लो। नहीं, ये 6 बजे क्यों है और गर्मियों में इतनी जल्दी और सर्दियों में इतनी देर से क्यों है? आजमाइश है, आजकल ईशा आजमाइश है तो सर्दियों में फजर ही आजमाइश होती है। जागो, तुम्हें जागना पड़ेगा ईशा तक। भाई आप कहते इतनी देर इतनी देर, तो याद करो सर्दियों में तुम्हें 4 बजे भी तो पढ़ा दी थी ईशा, फिर भी तो 4 से लेके रात 6 बजे तक जागते ही थे ना। तो ये आजमाइश है, चूंकि हमने इसकी रूह को नहीं पाया तो हमें इससे ट्रेनिंग ही ना मिली। नमाज बराए नमाज, हमारी नमाज बराए ट्रेनिंग नहीं रही। लिख लें आज के बाद, नमाज ट्रेनिंग के लिए, ज़कात ट्रेनिंग के लिए, रोज़ा ट्रेनिंग के लिए, हज ट्रेनिंग के लिए। हम जाहिरदारी पे कितना लड़ते हैं, हाथ कहाँ बांधो, रफुल यदैन करो कि नहीं करो, ऊंची आमीन करो कि ना करो। मजाक नहीं लगता आपको ये सारी बातें सोचकर? कभी किसी मुसलमान को आपने दूसरे गिरोह या फिरके से इस पे लड़ते हुए देखा कि नमाज में खुशू है कि नहीं, नमाज पढ़ते हुए अल्लाह की तरफ तवज्जो है कि नहीं? और लोग नमाज नहीं पढ़ते, किसी को परवाह नहीं है, जब नमाज पढ़ने लग जाए कहते हैं किस फिरके की नमाज है, किस मसलक की नमाज है। ये है आज हमारे दौर का अलमिया, सिर्फ शक्लों पे खो गए, अमल की असल पे ना गए।